अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिं जद्गिर्वातमा वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरो दिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद्भागवतं स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक नंबर 11। श्रुतेन तपसा वाकिं वचो विश्चेत वृत्तिभि बुद्ध्या वाकिं निपुणया बलेनेन्द्रिय धारसा। श्रुतेन तपसा वाकिं वचो विश्चित वृत्तिभि बुद्ध्या वाम किं निपुणया बलेनेन्द्रिय धारसा। श्रुतेन तपसा वाकिं वचो विश्चित वृत्तिभि बुद्ध्या वाम किं निपुणया बलेनेन्द्रिय राधसा। बलिए तपसा वाक्यं वचो विश्चित वृत्तिभि बुद्ध्या वाम किं निपुणया बलेनेन्द्रिय राधसा। श्रुतेनं तपसा वाक्यं वचो विश्चित वृत्तिभि बुद्ध्या वाम किं निपुणया बलेनेन्द्रिय राधसा। श्रुतेनं तपसा वाक्यं वचो विश्चित वृत्तिभि हृदयावं निपणया बड़े नेन्द्रिय राधसा। माताएं श्रुतेन तपसा वाक्यं वचो विश्चित वृत्तिभि बुद्ध्यावं किं निपणया बड़े नेन्द्रिय राधसा। बचो विश्चित वृत्तिभि बुद्ध्यां किं निपुणया बलेनेन्द्रिय राधसा। शब्दार्थ श्रुतेन वैदिक शिक्षा से तपसा तपस्या से बा अथवा किम क्या अर्थ बच्चों भी वाणी से चित चेतना का वृत्ति भी व्यापार से बुद्ध्या बुद्धि से बा अथवा किम क्या लाभ निपुणया निपुण या पट्टू बले न बल से इंद्रिय राधसा इंद्रियों की शक्ति से अनुवाद। भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कृपया दोहराइए, भक्ति के बिना तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन की शक्ति, उच्च ज्ञान बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तात्पर्य, इसमें उपनिषद का एक श्लोक प्रभुपाद जी ने कोड किया है, जो कि मुंडक उपनिषद का 3:2-3 से हमें पता चलता है कि नाय आत्मा प्रवचन न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यम, तसैव आत्मा विवृणुते तनुषाम। केवल वेद को अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। अनेक मायावादी सन्यासी वेद वेदांत सूत्र तथा उपनिषद के अध्ययन में रत रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरा शब्द में वे भगवान के कोई नहीं जानते, तो फिर समस्त वेद के अध्ययन के क्या लाभ है। यदि कोई वेद का सार शिक्षा को न ग्रहण करे, जैसे भगवद गीता में पुष्टि है कि वेदेश सर्वे अहम वेद विद्या, समस्त वेदों को द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। ऐसे अनेक धार्मिक पद्धतियाँ हैं जिसमें तपस्या पर आधारित व अत्यधिक बल दिया जाता है, किंतु अंत तक लोग भगवान कृष्ण को कोई समझ नहीं पाते। अतः ऐसे तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई सचमुच भगवान के पास पहुँच चुका है तो उसके तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को भक्ति युग द्वारा समझ जाता है। भगवद गीता में 9वें अध्याय में भक्ति को राजगहम व समस्त ज्ञान का राजा कहा गया है। वैदिक साहित्य के अनेक उत्तम वाचक और रामायण श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता का वाचक करते हैं। कभी कभी वे व्यवसायिक वाचक अत्यधिक पंडित तथा वाग्दग्ध प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवशत वे भगवान का भक्त नहीं होते, अतः वे ज्ञान के सार कृष्ण के विषय में श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि अनेक विचारवान लेखक तथा सृजनशील दार्शनिक है, किंतु अपनी समस्त पंडित के बावजूद भी यदि वे भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो कोरे ज्ञान से इस संसार में अनेक प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति है और भी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक खोज करते रहते हैं। वे समस्त भौतिक तत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, किंतु उसमें पटो ज्ञान तथा समस्त दृष्टि सृष्टि के दक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद भी उनकी प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि वे भगवान को नहीं समझ पाते। यहाँ तक हमारे इंद्रिय का प्रश्न है। ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी है जो उससे अधिक दक्षतापूर्ण अपनी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणतः गिद्ध अथवा बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी भूमि के छोटे ऐसे वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि काफ़ी दूर से खाद्य और सब को पहचान लेती है। निश्चय उनकी दृष्टि मनुष्य दृष्टि से अधिक प्रखर है, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि उनका अस्तित्व मनुष्य से अधिक महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार कुत्ते काफ़ी दूर से अनेक वस्तुओं को सूंघ लेते हैं। अनेक मछलियाँ अपने शत्रुओं को व शत्रुओं को आने का समझ लेते हैं। ये सारे उदाहरण श्रीमद् भागवतम में वर्णित हैं। यदि हमारे इंद्रिय जीवन में चरम लक्ष्य भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकती हैं तो वे सब व्यर्थ हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रनुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानितं नमं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वंशा कल्पतरुभच्च कृपा सिंधु वैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबोध्यानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पञ्चतत्मातकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदितो गौड़दये पुष्पवंतो चित्रसंधौत मनुदो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम हरे नामेव केवलं कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रातकालीन भगवत कक्ष में आप सभी भक्तवृंद से मैं अब हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। आप ये जब प्रसंग बहुत लंबी समय से आप श्रवण करते आ रहा है, इसका जो शीर्षक है प्रचेताओं का नारद का उपदेश, रूपक का माध्यम से नारद मुनि प्राचीन भोई को उपदेश दिए और जब प्रचाता नारद मुनि का उपदेश अभी ग्रहण कर रहा है, क्योंकि आप पहले सुने हैं कि 10 प्रचेताओं का मनोभाव एक ही जैसे था और उन्होंने 10 पत्नियां ग्रहण नहीं किए थे। उनका कितना पत्नी था, कितना था जी, क्या नाम था उसका, मारिसा। आज का जो आप श्लोक में आप सुने हैं कि भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान बल तथा इंद्रिय की शक्ति को कोई अर्थ नहीं रह सकता। जब प्रचेता लोग हो समुद्र का अंदर भाई के तालाब का अंदर उन्होंने कितना साल तपस्या किए थे, तो यहाँ उनका तपस्या का तो कोई कीमत ही नहीं दिया था। वो यहाँ जो आज का जो अनुवाद में बतला रहे कोई ही अर्थ ही नहीं होता है। उनका क्या व्यर्थ हो गया तपस्या, वो तपस्या का बल से इतना शक्ति उन्होंने प्राप्त किए थे कि समुद्र का से जो वो तपस्या करके लौट के आए, ये संसार भर में पेड़ पौधा से सब भर गया था। ये तपस्या का शक्ति से उनको सबको जला दी। तो तपस्या कोई गृहस्थ करे अथवा ब्रह्मचारी संन्यास करे उसका फल अपना पास ही बा शक्ति से शक्तिशाली हो सकता है। शास्त्र का वर्णना अनुसार कहा जाता कि कोई क्रोध करता है तो उसका तपस्या का शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए है जो वैष्णव को सावधान रहना चाहिए कि भक्ति में एक क्रोध महान शत्रु है। लेकिन कभी कभी देखा जाता भक्त का अंदर भी क्रोध आता है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं। तो हनुमान जी ने क्रोध से लंका जला दिए कि नहीं, अर्जुन ने एक क्रोध का माध्यम से एक कुरुक्षेत्र में लड़ाई करके और विजय प्राप्त किए। महान आचार्य जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इसको त्याग काम नहीं कर सकते। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि काम कृष्ण कर्मापणे क्रोध भक्त देसी जाने लोभ साधु संगे हरि कथा मद कृष्ण गुणगान। हम उसको छोड़ नहीं सकता लेकिन उसको हम उपयोग में ला सकता है। क्रोध चंडाल का बराबर है लेकिन भगवान के सेवा में हम उसको लगाता है तो वो भक्ति में परिणत हो जाता है। क्योंकि ही ये हनुमान एवं अर्जुन का उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो हमारे भक्तों का भी चतुर्मास आ रहा है एवं कार्तिक महीना में तो तपस्या करते हैं कई और 12 घंटा के अंदर एक बार अनुकल्प प्रसाद ग्रहण करते हैं, कहीं तो पानी पी के रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हो आज का अनुवाद में बताया गया कि उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। भगवद गीता में गुणोत्तरय विभाग में एक तपस्या का बारे में और कर्म का बारे में भी बतला गया है। तीन प्रकार का तपस्या होता है, राजसिक होता है, तामसिक एवं सात्विक होता है। और आप कृष्णदास कविराज का भाषा में आप सुने होंगे कि आत्मेंद्रिया प्रतिवांछा तारे बोली और कृष्ण इंद्रिया प्रतिवांछा, ये अंतर है कि अपना इंद्रिय हो को संतुष्ट करने के जो हम तपस्या करते हैं वो क्या होता है, काम में परिणत होता है। और जब भगवान कृष्ण का इंद्रिय पितृ विधान से हम जब तपस्या करते हैं तो वो क्या होता है, प्रेम होता है। क्योंकि इसी वृंदावन में भी यमुना का किनारे में गोपियाँ जब जब 8-8 साल का उम्र था उनका, उन्होंने तपस्या किए थे कि नहीं, और उनका उद्देश्य क्या था, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। कांतायनी महामाये महाजोगिनी धेश्वरी नंद गोपम सुतम देवीम पतिम में कुरुते नम। लेकिन हम जो तपस्या करते हैं तो किसके लिए, खास करके हमारे अभी जो भक्तर विदेश में है, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। गिराज गोवर्धन का कई बार दंडवत परिक्रमा भी लगा देते हैं और कोई भी अभी जो जाने का तैयारी में है वो भी तपस्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक काम का आवाज दिखा दे रहा है कि नहीं। महानदी महाराज ने उनका जो गायत्री महिमा माधुरी लिखे हैं उसमें दंडपत परिक्रमा का उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समाहित कि हम तपस्या करने से हमारे अंदर एक बहुत बड़ा शत्रु उत्पन्न होता है, वो क्या है, दंभ। ये भक्ति जीवन में जो कि संपूर्ण रूप में बाधक है लेकिन तपस्या का बिना भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। बल्कि यहाँ पर तो बता दी गई और उद्धव भी जो भगवान को पूछते हैं एकादश स्कंद में वहाँ पर भी भगवान उपदेश देते हैं कि आप वेद अध्ययन करके तपस्या करके आप त्याग करके मेरे को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तपस्या जो है शास्त्र का निर्देशन से और महाजन लोग जिस विधि से बतलाए उसी विधि से होना चाहिए। इसलिए शास्त्र में बतला गया कि स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रंग विधि बिना ओकांती की हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते। जैसे शास्त्र अनुसार पर विधि विधान अनुसार महाजन का यदि अनुसरण हम नहीं कर रहा है, उनका अनुकरण कर रहा है, ताले तपस्या में हमारा कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसका उदाहरण देखिए, सनातन गोस्वामी जाते थे सात कुश और आप लौटते थे सात कुश और परिक्रमा सात कुश करते थे, कितना कुश हो गया? 21 कुश हो गया। अभी कोई ऐसे है तपस्या करने वाला है? कोई है आपका अंदर? कोई हाथ उठाइए, इसे कर सकते हैं? और करने का साहस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुकरण है का अनुसरण दोनों है। हाँ, महाजन का अनुसरण करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, लेकिन सनातन गोस्वामी जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिए तो भगवान उनका तपस्या से संतुष्ट हो गए। हम जो तपस्या करते हैं भगवान का संतुष्ट विधान होना चाहिए, नहीं हम भगवान के लिए एक ए टू जेड एक लंबा लिस्ट ही लगा दें। इसे लोकनाथ महाराज बताते हैं कि जन्म दही जसम दही सर्वम दही बताते हैं। ये तपस्या का उद्देश्य हमारा रहता है, तपस्या का उद्देश्य रहना चाहिए कि भगवान हमारे तपस्या से संतुष्ट रहे और हमारे भक्ति जीवन अग्रगति हो। तब सनातन गोस्वामी को भगवान अपना पाद पद्म का जो सीढ़ा प्रदान किए, आप उसको भी दर्शन किए होंगे, इधर राधा दामोदर मंदिर में भी है, जो कि अभी चार बार परिक्रमा करने से गिरिराज का फल मिलता है। इन्हें कि जवान लोग उसको परिक्रमा करे चार बार और गिरिराज फल का मिल जाए। जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक करना चाहिए, और सनातन गोस्वामी भी ऐसे किए। और जो वृद्धावस्था हो गया उनका और चालना में है अब असमर्थ हो गए, तब भगवान उनका ऊपर दया किए। और जवान होते हुए भी हम चार बार परिक्रमा लगाते, बोले सनातन गोस्वामी को दिया था भगवान बतलाए, ये गलत है। जब तक शक्ति सामर्थ्य है तब तक तपस्या और करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है अंतिम तक तो तपस्या करना चाहिए, लेकिन तपस्या का उद्देश्य और उससे भगवान संतुष्ट हो रहा है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। जैसे काल हम एक श्लोक को ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है, वैष्णव महाराज उसको बहुत याद करते हैं, उसमें उसका भावार्थ इसे है कि आप भगवान का सेवा कर रहा है नित्य नियमित, तब तपस्या करने का कोई जरूर नहीं है। आराधित हरि तपता तत्त क्यों, आप यदि भगवान को पूजा कर रहा है नित्य नियमित व भक्ति कर रहा है तो तपस्या करने का कोई जरूर नहीं। ना आराधित यदि तपस्या तत्त क्यों, आप यदि तपस्या किया और तपस्या में भगवान संतुष्ट हुए नहीं, आपको दर्शन भी दिए नहीं, अब आप भक्ति जीवन आगे बढ़ नहीं बढ़ रहा है, तब तपस्या करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि भक्ति के बिना कठिन तपस्या शून्य है। कोई कोई इतना प्रखर मेधा शक्ति है कि एक बार सुनने से याद रखते हैं। प्रोदानंद सरस्वती और महाराज बताते हैं कि चार प्रकार का है, एक वेग वेगा होता है, एक चीर वेगा, एक वेग चिरा, एक चीर वेगा होता है। उसका उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या किए थे कि ये है कि एक बार सुन के ही याद रखता है, और कोई बहुत मेहनत से है सुन के याद करता है, लेकिन क्या करता है, और फिर जो जल्दी ही एक बार सुन के याद किया लेकिन थोड़ा देर के बाद पूछेंगे तो है ही नहीं, और जो हो बहुत मेहनत से उन्होंने सुन के याद किया देखा जाएगा अंतिम तक सक वो याद रखा है। और किसका तो वोल्टेज इतना डाउन है कि वो 24 घंटा सुनने पर भी उसका याद नहीं रहता है। जैसे आप ब्राह्मी खाइए, चवनप्राश खाइए और और श्रवण संतिका कोई भी आप टैबलेट ग्रहण कीजिए, क्योंकि एक बार राधारमण महाराज से भागवतम क्लास में एक भक्त ने पूछे थे कि ब्रह्मचारी का पहला लक्षण क्या है, तो महाराज बोले कि उनका प्रखर मेधा शक्ति होता है। तो फिर कुछ देर बाद फिर महाराज बोले कि और भगवद गीता में जो 15 अध्याय में 15 नंबर श्लोक में उसमें महाराज उसको खंडन कर दिए। फिर बोले कि नहीं, आप यदि मेधा शक्ति करके वो दूसरा को परास्त करने के लिए व अपना और मेधा शक्ति को दूसरा ऊपर प्रभुत्व जताने का मनोवृत्ति हो तो भगवान क्या करेंगे, आप और का जो मेधा शक्ति को डाउन कर देंगे, क्योंकि आप उसको सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो इसका ने पहले जैन किया तो महाराज लोग इतना जब लेक्चर देते हैं तो मैं सोचता था कि उन लोग का याद कैसे रहता है, क्योंकि ये भक्ति व भक्त को भक्ति प्रदान करने के लिए उनका जो वाणी को उन्होंने उपयोग करते हैं। इसलिए देखिए महाराज लोग आप भी बता दिए, उन्होंने नहीं पढ़ के क्लास दे देते, क्योंकि भगवत सेवा में उनका वाणी को उन्हें नियोजित करके रखे। इसलिए कठोर उपनिषद मना मुंडक उपनिषद में बताया जा रहा है कि नाय आत्मा प्रवचन न लभ, ये भक्त भगवान को ये प्रवचन माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों कि प्रवचन कर देने से नहीं होता है, ये दूसरे के लिए हम प्रवचन दे दिए बहुत अलंकार ढंग से, अमर कुश विधान बोलिए और अरब कोई सारे जो अलंकार है उसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे करके व्याख्या कर दिया, क्योंकि अलंकारी ढंग से हम व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, श्रुति मधुर होगा। लेकिन उनका जो गूढ़ रहस्य है उसको हम प्रकट नहीं करते हैं। जैसे है भगवत गीता का प्रभुपाद जी ने बोले कि राज गुह्यम, ये राज गुह्यम का अर्थ क्या है ना, ये जन्म मृत्यु चक्र से जो विद्या हमको छुड़ाता है वही है राज विद्या। और दूसरा भाषा में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखे हैं कि भक्ति है, ये भक्ति का माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल भक्तिर बस चैतन्य गुसा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का समय में भी एक ब्रह्मचारी था, वो हर दिन क्या करता था, वो दूध पी के ही रहता था। चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी है तो उन्होंने बोले उसको अरे घर से ही निकाला। जैसे श्रीवास का सासुड़ी भी कीर्तन सुनने के लिए एक हाणी का अंदर व टुकड़ी का अंदर ढक के बैठा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये नास्तिक को बिल्कुल हरिनाम सुनाना ही नहीं चाहता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये जुगधर्म हरिनाम का कीर्तन भी क्या करते थे एवं अंतरंग भाव से उन्होंने रस आस्वादन करते थे। अधिकारी जो भक्त है उसका साथ ही ये भक्ति का जब चर्चा होता है तब तो उसका रस आस्वादन किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु सीधे सीधे मना कर दी, उसको यहाँ से निकाला है ब्रह्मचारी को, क्योंकि उसका अंदर दम भरा हुआ है, क्योंकि मैं दूध पी के ही रहता हूँ, दूध पीने से थोड़ी भगवान मिल जाता है। यदि आप भगवान को भोग लगा के नहीं पिया तो कोई लीटर पी लीजिए कि कोई फर्क पड़ता थोड़ी, तो आप उसमें क्या है, आप पापे ग्रहण किए। भगवान गीता में बतलाए कि नहीं, जो भोग नहीं लगा के वो खाता है वो पापे ग्रहण करता है, कोई उदाहरण नहीं से। तो तपस्या करने का कोई शास्त्र में अनुमोदन नहीं है, ऐसे बात नहीं है। जैसे आप लोग को मैं उदाहरण बतलाया कि गोपी लोग तपस्या किए, लोग तो काम भाव से भगवान को भजन किए, लेकिन भगवान का संतुष्ट विधान के लिए। जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि पशु पक्षी लोग का भी स्मरण शक्ति और घ्राण शक्ति बहुत तीव्र होता है। उनका बाज का उन्होंने उदाहरण दिए, तो ये बाज बहुत ऊपर उठता है, लेकिन उनका हाँ नजर कहाँ रहता, नीचे रहता। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन यही नहीं कि मनुष्य से वो उन्नत है, मनुष्य से वो उन्नत नहीं है। एक प्रसंग में आता है कि अर्जुन का साथ भगवान कई बार विहार करने जाते हैं, तो एक बार एक शव बा मड़प गिरा हुआ था और एक लुमड़ी ने आके आस पास में खाली घूमता फिरता था, वो खाली सूंघ के देख के फिर चले जाता था। अर्जुन देखे उनको और अर्जुन का मन में क्या था, अहंकार था। क्या अहंकार था, ना भगवान खुद मेरा को भगवत गीता का उपदेश दिए, इसलिए भगवान कभी भी भक्त का अभिमान व अहंकार को रखते नहीं, उसको तोड़ देते। तो जो वो सबका किनारे होते हुए गए तो अर्जुन ने देखा कि ये लुमड़ी ने कहीं घूम फिर रहा है और सूंघ रहा है, तो अर्जुन ने बोले ये तो बहुत बुद्धू है, क्योंकि उसको खाने का चीज पड़ा है तो तुरंत महाप्रसाद है गोविंद क्या बोलेगा, तुरंत जो मिल गया तो चालू करना चाहिए उनको, क्योंकि जो महाप्रसाद कोई दूर देश से आता है कि बासी, बल्कि मन में भावना करने से ही अपराध होता है, ये जगन्नाथ प्रसाद का महात्मा में ये लिखा हुआ है। क्योंकि सार्वभौम चार्ज जब हो उठ के अपना बेड में बैठे थे तब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले गए, तो उनको जब दिए बोले अरे मैं तो नहाया नहीं कुछ नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ एक शिक्षा दिए, बोले प्रसाद जब भी मिला आपको मंत्र को उच्चारण करना कोई जरूर नहीं। हम लोग को सबका हर दिन हम मंत्र उच्चारण करते सबको याद होगा, लेकिन उसका गुरुत्वपूर्ण व अर्थ बहुत गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि भष्टम, ये जो चार है ये बराबर है। उसको ग्रहण करने का बाद क्या करना चाहिए, सही और ना मृत राधा कृष्ण, हम कितना राधा कृष्ण गुणों गान करते हम ही जानते हैं, कई वैष्णव का गुणगान तो करते ही नहीं, उसको तो कोई गलती है उसको देखने से एक चालू किया था दूसरा और थोड़ा अलंकार करके फिर बढ़ा देते हैं। उसका उदाहरण क्या है, जब हम चटनी के बाद खट्टा चीज़ देखते हैं तो जीभ से हमारा क्या होता है, पानी निकलने आता है हमारे उस समय, और सही और ना मृत पाओ राधा कृष्ण गुणों उस समय निकलता नहीं, तो हम क्या चालू करते हैं, बस अपराध करने चलते हैं। तब तो लोमड़ी को उपवास कर रहे थे अर्जुन ने, बोले ये सब बुद्धू है कि खाने का चीज मिल गया तो खाना चाहिए पेट भर के, तो भगवान से उन्हें प्रसन्न कर दी, तो भगवान को बतलाए कि अरे ये बुद्धू क्या काम कर रहा है, अभी चार चक्कर लगा चुका है, प्रदक्षिणा तो कर दिया, अब तो खाना चाहिए कम से कम मंत्र बल के। लेकिन भगवान बोले अच्छा, क्योंकि भगवान जानते थे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि अभी अर्जुन का अंदर अरे गर्व व दम्भ का घड़ा भर चुका है, अभी उनका तो घड़ा को फोड़ना है भगवान, तो फिर वो लुमड़ी को भगवान पूछे, बोले भाई तुम क्यों परिक्रमा लगा रहे, चालू करो महाप्रसाद गोविंदे, तो उन्होंने बोले इतना थोड़ी बुद्धू है मैं पशु हूँ लेकिन मेरा भी ज्ञान है। बोले क्या तुम्हारा ज्ञान है, क्या ज्ञान है, बोला देखिए इसलिए मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ कि वो कभी पैर में अपना पैर में कोई चार धाम यात्रा किया कि नहीं, चार धाम यात्रा किया कि नहीं, क्योंकि मैं उसका पैर सूंघ के बता सकता हूं कि वो चार धाम यात्रा किया कि नहीं, ये शक्ति मेरा है, ये ज्ञान मेरा है। अर्जुन तो देखते रहा वो, क्योंकि वो बड़ा ज्ञानी अपने को समझ रहा था, और बतलाया कि मैं उनका मुख सूंघ के बता सकता हूं कि ये कभी जिंदगी में महाप्रसाद खाया कि नहीं, भगवान का नाम कीर्तन किया कि नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कान सुन के मैं बता सकता हूँ कि भगवान का कभी और कीर्तन सुना कि नहीं, भगवत कथा श्रवण किया कि नहीं, और नाक सुन के मैं बता सकता हूँ कि कभी भगवान का अर्पित हुआ फूल तुलसी आग्रहण किया कि नहीं। तो अर्जुन का उनका जो अहंकार का घड़ा था फूट गया, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि अर्जुन बोला कि भगवान खुद मेरा को उपद दिया, अरे यहाँ लुमड़ी का तो क्या ज्ञान होगा, क्यों ज्ञान नहीं है इसलिए चक्कर मार रहा है। जो लुमड़ी ने पशु है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पर वो उल्लेख किए हैं पशु होने से क्या होता है, वो ग्रहण करके कि वह दर्शन करके पक्षी अपना नीचे का साफ साफ दिखाई देते हैं, उनको कोई दुर्वेक्षण जंतर देने का जरूर नहीं है, एक लेंस आता है ना दूर से देखने से नजदीक देखता है, आता है कि नहीं, लेकिन चिड़िया बाज को जरूर नहीं है। तो अर्जुन उनका जो अहंकार का जो घड़ा फोड़ गया, तो भगवान से उन्होंने फिर माफ़ी मांग ली। तो इसमें उदाहरण से हम शिक्षा मिलता है कि हम तपस्या करते हैं एवं तपस्या का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कोई तात्पर्य में बतला है, जैसे रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, और जैसे शंकर भगवान का आविर्भाव तिथि में भी लिंगराज भुवनेश्वर क्षेत्र में विराजमान है, इसीलिए वहाँ का भक्त लोग लगभग अनुकल्प प्रसाद पाते हैं। लेकिन जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या की, ऐसे तपस्या नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप तपस्या किए कि नहीं, एक बार तापस आए, क्योंकि वहाँ नारद मुनि और एक मुनि थे, चिड़िया का रूप धारण करके वहाँ भगवान का नाम सुना थी, तो उसका डिस्टर्ब हो गया, तो वो वहाँ से आए एवं गर्भदान संस्कार हो गया। किसका? प्रहलाद महाराज उसी माध्यम से बहुत बड़े भक्त बने। वैष्णव महाराज बता रहे थे कि वह काल भी आप सुने हैं, ये भौतिक जगत में जो चार आश्रम एवं चार वर्ण है, जो गृहस्थ आश्रम में जिन्होंने प्रवेश करते हैं, ये गर्भाधान संस्कार मुख्यतः बहुत अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा। आजकल संतान सब देखते हैं आपकी लारे लबाबा, इतना ही नहीं हमारे भक्त लोग का संतान भी ऐसे होते, क्योंकि गर्भाधान संस्कार ठीक से नहीं होता, क्योंकि हिरण्यकश्यप ऐसे जानबूझ के गर्भाधान संस्कार नहीं किया था। वहाँ तो नारद मुनि और मुनि जो दूसरा मुनि थे, उनको वो छीनने के लिए वहाँ भगवान का नाम सुना है, लेकिन वो भगवान का नाम सुनते हुए आया, उसी समय दैव से कयाधुने ऋतुमती थे, उन्होंने फिर बतलाया कि आप तो तपस्या करने के गया था बहुत लंबे समय के लिए, पर आपस क्यों आ गया। तो बोले अरे बोलो मत, कहीं फिर भी साधु लोग वहाँ जाके भगवान का नाम मेरा को सुना दिए, इसलिए मैं मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया इसलिए आ गया, क्योंकि उसका जो चेतना उसमें भगवान का ऊपर निर्धारित था। उन्होंने जो गर्भधान संस्कार किए उसी ही फलस्वरूप प्रहलाद महाराज आए। ये असुर का कोई नीति नियम तो मानते नहीं, इसलिए उनको राक्षस बा असुर कहा जाता है। इसलिए हमको तपस्या करना अनिवार्य है, क्योंकि आप सुने भगवतम में कि ऋषभ देव ने ये शरीर ये खा पी के गुआने के लिए नहीं, उन्होंने बतलाई अपना पुत्र लोग को कि तपस्या करने के लिए। लेकिन तपस्या हम कैसे करना कि हमारे महाजन लोग को बतलाइए, और उन्होंने करके भी देखला है। जैसे मान लीजिए रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटा उन्हें भगवान का नाम लेते थे, और एक दाना छांत लेके उन्होंने जीवन यापन किए। अरे एक दिन जब उन्होंने ब्रजवासी को पूछे क्योंकि एक बड़ा दाना में वो छांत लेके आया, क्योंकि ब्रजवासी का दया आया कि इसके लिए ना बाबा छोटा से दाना में छांत पी के सारा दिन भजन करेंगे, तब बड़ा दाना लेके लाए थे। उस दाना कहाँ से लाए थे उन्होंने? सखी स्थली से लाए थे, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी उन्हें निष्ठा स्तर में श्रीमती राधारणी का अनुगति में भजन किया करते थे। उन्होंने जब ब्रजवासी को पूछ लिए कि ये धना कहाँ से आप ले आए, तो उन्होंने सकेत तुरंत फेंक दिया, तुरंत फेंक लिया, क्योंकि उनका निष्ठा श्रीमती राधारानी का और अनुगत में था। आज चंद्रा बड़े उनका विपक्ष पटिया, क्योंकि विपक्ष बार दल जब नहीं होता है रस आस्वादन करने में आनंद नहीं होता है, क्योंकि एक लीला में आप सुने होंगे कि सभी लोग ऐसे ही चर्चा किए कि श्रीमती राधारानी को बहुत परेशान रहा चंद्राबड़ी करते हैं, तो चंद्राबड़ी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो चंद्राबड़ी ने एक बहुत बड़ा फूल का महल बनाया उन्हें और भगवान का पास भी एक निमंत्रण भेज दिए एवं श्रीमती राधारानी का पास भी, और अंतिम में उन्होंने लिख दिया आप लोग जब नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। तो श्रीमती राधारानी एवं श्याम सुंदर उनका निमंत्रण को स्वीकार कर दोनों गए, उनको ऐसे इतना थाट बाट से उन्होंने आगवान किए कि उसमें कोई दिखाई नहीं गया कि उनके विपक्ष पार्टी है। एक भौतिक जगत का हिसाब से देखिए वो उनका ताऊ का लड़की है ना, ताऊ का लड़की, लेकिन ये लीला को पुष्टि करने के लिए देखिए जब भगवान राधारानी का कुंज में आते हैं तो चंद्राबड़ी का सखी लोग क्या करते बीच से लेके चले जाते हैं, उसमें श्रीमती राधारानी का मान और बढ़ जाती है, क्योंकि जब विरोधी दल नहीं होता है तो वो देखिए नेता लोग को भी विरोधी दल नहीं होता तो प्रजा लोग को कोई फैसिलिटी अच्छा मिलने वाला नहीं होता। अभी आप लोग जब कांग्रेस सरकार था देखिए कितना दिन रहा, लेकिन आप लोग को जीओसी में दिया थोड़ी दिया, अभी नरेंद्र मोदी को आप वोट दे दिए, उन्होंने आप लोग को भय है जीओसी में दे दिए, आप अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक कली का चाल है, क्योंकि जो परिकीत महाराज ये धरातल पर राज्य कर रहे थे उनका भक्ति का प्रभाव देखिए, उनका तपस्या का प्रभाव देखिए, कड़ी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन कली महाराज बहुत चलाक था, तो वह परिकीत महाराज को उन्होंने क्या बतला है, बोला कि मेरा भी तो ये राज्य में अधिकार रहने का है, तो महाराज बोल दिए कि जहाँ पर चार प्रकार का पाप होता है तुम वहाँ चले जाओ, तो चार परिक्रमा लगा दिया होगा लेकिन देखा तो नहीं है, तो फिर वो दिमाग लगाया बोला कम से कम जीने के लिए हम कुछ तो काम दीजिए, तो परिकीत महाराज क्या बोले, जहाँ पर धन संपत्ति सोने है वहाँ विराजमान कर दिए, जो कि भागवतम में नहीं है, मैं सुना हूँ कि कड़ी महाराज ने जो परिकीत महाराज जब शिकार खेलने गए थे उसी दिन उसी मुकुट में विराजमान थे, जो विराजमान थे वो मुकुट और जरासंध का था, जरासंध को जब वो भीमसेन ने वध कर दिए तब वो मुकुट लेके आए थे और अपना खजाना में था, जो परिकीत महाराज ने शिकार खेलने के ले गए उसी मुकुट पहन के गए थे, क्योंकि इतना महान वंश का परिकीत महाराज इतना महान भक्त है जो कि भगवान को मातृगर्भ में दर्शन दिए थे, उन्होंने इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं, तो ये कड़ी का प्रभाव है, इसलिए ये जियो फ्री में नहीं है, ये कली का भी एक साल है, इसलिए भक्त लोग को इसमें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आत्मेंद्रिया प्रतिवांछा तारे बोली कृष्ण इंद्रिया प्रतिवांछा धर प्रेमणा, आप प्रचार के लिए उपयोग कर रहा है तो वो ठीक है, और आप लोग जानते हैं जिन लोग जियो सिम यूज करता है उसमें क्या क्या गूगल में आप सर्च करेंगे तो क्या नहीं होता है, आप ही उसको समझ लेने का, इसलिए तपस्या करने के लिए एवं यहाँ पर जो बतलाया कि चिंतन शक्ति, चिंतन भगवान का बारे में चिंतन करना चाहिए, कब चिंतन होगा ना, हम जो अपराध मुक्त होकर जो भगवान का नाम करें, भजन रे मध्यश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण नाम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निर अपराध नाम लैले पाए प्रेम, हम जो भगवान का नाम अपराध युक्त होके जप कर रहा है, हमारा चिंतन कैसे होगा? इसीलिए नवोदय भक्ति का जो पहले का अंग क्या है, श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निधम। हम श्रवण करें किससे ना, अवष्टमुख से। इसलिए पद्म पुराण में बतला गया कि अवष्टम मुखदगिरम पूत हरिकथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्पचेष्ट यथापर। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखे हैं कि बहुत सारे कथावाचक बहुत अलंकारी ढंग से आपको सुना दिए, एक एक शब्द का 20-30 सब अलंकार लगा, अब सुनने में बहुत बहुत मधुर लगा। लेकिन व्यासासन से उठ जाने का बाद फिर चार नियम को उन्होंने चालू करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सर्पचेष्ट यथापर श्रवणम नैव कर्तव्य। इसलिए अधिकारी वैष्णव से सुनना चाहिए और सुनने से ही नहीं उसको सार ग्रहण करना चाहिए। हर दिन हम सुनते हैं, यहाँ से सुन के इधर से निकाल देंगे तो काम नहीं है। श्रवणताम से सुकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन पूर्ण भावे उसको हम सुन के जो जाते हैं, जो पालन करते हैं तब सुनना कहा जाता है और उसको भी साधु संग कहा जाता है। क्योंकि साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। हम तो बहुत लंबे समय से साधु संग कर रहा है, हमारा सर्वसिद्धि हो गया। कौन से भक्त का हुआ बताए, हाथ उठा सकते हैं किसका सिद्धि हुआ? नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। तब क्या हुआ? इतना दिन हम तपस्या किया, इतना दिन श्रवण किया तो व्यर्थ किया कि नहीं? लेकिन भगवत गीता उसका प्रमाण देते हैं, नेहाभी समक्रमणा सुस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्प मवस्य धर्मस्य त्रायते महत्वाय। सबसे मृत्यु सबसे बड़े भय है, इसलिए हमको बहुत ध्यान सहकर तपस्या करना चाहिए। हम तपस्या करते हैं जैसे हमारे वीरभद्र प्रभु है, पूरा निर्जल एकादशी करते हैं और भी कई भक्त करते हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य भगवान का प्रीति साधन का होना चाहिए। क्योंकि ये शरीर ये तपस्या के लिए, ये खा पिए कर सुअर और कुकर का जैसे निभाना नहीं चाहिए, हमारे उद्देश्य होना चाहिए। और क्या है ना, उच्च ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञानी क्या कौन थे? जो बृहस्पति का शिष्य है उद्धव जी ने, उनका ज्ञान का भंडार था, उनका भी अहंकार था। इसलिए भगवान बोले कि अरे हमारा मित्र आर जो उद्धव को भी ये ज्ञान का जो उसका घमंड है उसको तोड़ना है, इसलिए उनको ब्रज में भेज दिए थे। वो सोचते थे कि मैं तो व्याकरण पंडित हूँ, साक्षात मैं बृहस्पति से बड़ा हूँ। अरे गांव का ग्वालनी है, ग्वालनी किया सी उनको बहुत लंबा लेक्चर दूंगा एक कोई सारे शास्त्र का सिद्धांत देखे। यहाँ आके जब देखे और उनका जो प्रेम का जो परिपक्व अवस्था उसी आर मार्ग पर है। उन्होंने नारद जो वो नंद महाराज को उन्होंने कोई सारा बख्खा कर दिए और सुना भी दिए, लेकिन नंद महाराज बोले अरे कृष्ण तो हमारे बेटा है, दूसरा लेक्चर मत दो तू, ठीक है? क्योंकि उद्धव जी बतलाए कि आप सबसे भाग्यशाली है और जो यशोदा माता भी। तो नंद महाराज बोले हम सबसे दुर्भाग्यशाली है। क्यों? हम भाग्यशाली होता है कृष्ण हमारे पास रहता, दुर्भाग्यशाली है इसलिए अभी हमारे पास नहीं है। ये बात सुन के उद्धव जी का जब लेक्चर बंद होने लगा धीरे धीरे, और श्रीमती राधारानी के पास जब गए तब तो उनका जो ज्ञान का भंडार था जैसे जीरो बल्ब हो जाता ना हेलोजन का सामने, श्रीमती राधारानी का सामने उनका ऐसे हो गया। उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम पैर का धोली तो मांग लेता हूँ ब्रज का राज का धोली गोपी लुक से। तो फिर उद्धव जी बोले ये जन्म में तो हो नहीं सकता, वो मांगने से देंगे ही नहीं। इसीलिए एक श्लोक उन्होंने बतलाया, क्या है श्लोक? बंदे नंद बजस्त्रिणा पाद रेणु भी अभिक्ष। कम से कम मैं उसको वंदना करता हूँ उनका पाद रेणु, और इसी जन्म में तो देंगे नहीं, इसलिए ने उन्होंने एक आशा बांधी कि अगली जन्म में मैं ब्रज में कोई घास का पौधा के जन्म लूँ, कि उसे मांगने का जरूर नहीं है। उन लोग हमेशा विचर रहा है वा घूम रहा है फिर रहा है भगवान के ढूंढने के लिए, तो अनायास में हमको मिल जाएगा। इसलिए एक ज्ञान से भी हमारे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत गीता में ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ माना गया है। कृष्णदास कविराज बताते हैं जो ज्ञानी लोग का आस्वादन व रस कैसे उन्होंने आस्वादन करते हैं, जो नीम का फल चूसने से कैसे लगता है, कैसे लगता है जी, जोर से बोलिए। हाँ जी, कड़वा लगता है मीठा लगता है, नीम का कड़वा लगता है मीठा लगता है, उसका अंदर वाला कैसे लगता है, ऊपर वाला मीठा लगता है लेकिन अंदर वाला कैसे लगता है, कड़वा लगता है। लेकिन ये ज्ञानी लोग का जो फल खाना ऐसे ही, और जहाँ हमारे भक्त लोग का कैसे है, आम खाए है कोई, अभी आम का सीजन है, आम जो है ये फल का राजा है। आम खाने में कैसे लगता है, आप दूध का साथ उसका सब बनाइए चीनी दे के, कितना मिठास है। ये भक्त लोग का जो रस आसादन ऐसे होता है, ये ज्ञानी लोग का जो रस आसादन करना है कैसे है ना, नीम का जब बीज खाने से जैसे कौड़वा लगता है, ये अंतर है। इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि ही भक्त के बिना कठिन तपस्या सुनने बोलने के शक्ति चिंतन और ज्ञानी भक्त को निंदा किया गया। तो आप ज्ञानी भक्ता बनना है ना प्रेमी भक्त बनना है, लेकिन ही प्रेम तो बहुत महंगा है। आप भजन में सुने होंगे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कहा जाता कि नामे रुचि होले प्रेमे रे उदय प्रेमे ते हरि के पाए, और गोपी लोग भी ये प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किए। पहले तपस्या किए एवं तपस्या का फल स्वरूप कांतायनी महामाई से मांगे कि उनका नंद महाराज जब पुत्र हो हमारे पुत्र रूप में प्राप्त हो, वो भक्ति में परिणत हो गया। ये देवता लोग को पूजा करने का शास्त्र में मना नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे उद्देश्य होना चाहिए। ये गोपी लोग को सिखाए, हम शंकर भगवान का पास जाएंगे तपस्या कर, और उनका नवरात्रि में बा शिवरात्रि में और पूरा निर्जला रख दिया, भगवान का पास जब हम जाते हैं लंबा लिस्ट दिखा देंगे, कोई पोजीशन के लिए, नाम के लिए, जस के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, तो भक्ति तो मिलेगा नहीं आप, और शंकर भगवान दे ही देंगे। क्यों इनका आप सुने होंगे कि एक भक्त था वो उनका घंटी चुरा रहा था, लेकिन उनका हाथ नहीं जा रहा था ऊपर, तो वो आगे पीछे देखा कोई है ही नहीं, लेकिन शंकर भगवान लिंग रूप में है, वो इतना उसको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जब लिंग का ऊपर चढ़े तो भी हाथ नहीं उठा उसका, पहुंचा नहीं, तो शंकर भगवान क्या के प्रकट हो गए, फिर उठा दिए उसको, ले ले घंटी ले ले, लेकिन वो मुर्खाना तो समझाने की भक्ति दे दे मांगा नहीं। ऐसे ही हम दूसरा देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। एक गोपिका तालुक का शाम से ये सिक्का लेते, इसलिए हम लोग को तपस्या करना चाहिए, तो ज्ञानी भी बनना चाहिए, और ज्ञान का बिना आप शास्त्र समझ नहीं सकते, लेकिन उसको हम भगवान का सेवा में उपयोग नहीं किया। जैसे उद्धव आया बोला उनको लेक्चर दूंगा, क्या लेक्चर देंगे, उनको प्रेम का पाठ पढ़ा दिए गोपी लोग, अरे थोड़े दिन के लिए आया था, बहुत लंबे समय रहे। इसलिए हम लोग को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तपस्या से ज्ञान से हमारे क्या अहंकार बढ़ता है, अरे अहंकार हो तो हो गया क्या, ये भक्ति में हमारे बाधक हो गया। तपस्या विश्वामित्र ने भी किए थे कि नहीं, एक अवसर आए तो उसको तपस्या बढ़ से राम नाम कर दिए, लेकिन जब मेनका आई नूपुर बजा दिया तो बाबा का 60,000 का तपस्या खत्म हो गया। लेकिन भक्ति से भक्ति का कोई पतन नहीं होता। उसका उदाहरण क्या है? हरिदास ठाकुर, वो तो 3 दिन तक वहाँ लख हेरा ने उसको पूरा ड्यूटी देने लगा, लेकिन बाद में उसको पर भक्ति से मति बना दिए। तपस्या करने का कोई बुरे बात नहीं, लेकिन उद्देश्य भगवान का उद्देश्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की समवेद भक्त वृंद की, क्योंकि हमारे कमांडर साहब आ गए इधर 9 बजे पहले बंद करने के लिए, चिट्ठी लिख के तो दिए नहीं, सीधे आ गए, इसलिए मैं डर के मारे बंद कर दिया। हरे कृष्णा। किसका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है भी बता सकते हैं। शील प्रभुपाद की, महाप्रसाद की।